मुरली चल रही थी 26/7/65 की, दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये किसी को पता नहीं है। गॉड इज वन, क्रिएटर इज वन, और कोई क्रिएटर नहीं है, ना ऊपर कोई दुनिया है ना नीचे कोई दुनिया है। ऐसे समझते हैं भक्ति मार्ग में कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे पातालपुरी में नरक है, दैत्यों का राज्य नीचे है पाताल लोक में और देवताओं का राज्य ऊपर है स्वर्ग लोक में। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो सब कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में जिनकी ऊंची स्टेज बन जाती है उनके लिए इसी दुनिया में स्वर्ग महसूस होता है। जैसे बाबा कहते हैं तुम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो नरक में क्यों बैठे हो? माना जो जितने ज्यादा निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको यहां इसी दुनिया में क्या महसूस होता है? स्वर्ग महसूस होता है, क्योंकि उनकी ऊंची स्टेज है। और जिन्होंने हेवनली गॉड फादर को पूरा नहीं पहचाना, निश्चय बुद्धि नहीं बने और बने भी हैं तो गॉड फादर से उतने प्रभावित नहीं होते जितने देहधारियों से प्रभावित होकर रहते, तो उनको इस दुनिया में स्वर्ग महसूस नहीं होता। भले बाबा ने इस वर्ष बोला है, अव्यक्त बाप दादा ने, इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाओ है? जीवन मुक्त वर्ष बनाओ। और 98 को कौन सा वर्ष बोला था है? मुक्ति वर्ष बोला था। ना 98 में किसी की मुक्ति हुई, हुई कि नहीं हुई है? हुई, किसकी हुई है? एक की हुई, किस एक की हो गई है? किस एक की मुक्ति हुई 98 में है? कोई की नहीं हुई? अरे कोई तो बताओ है। मुक्ति वर्ष मनाया तो क्या संगम युग में भी झूठा मनाया जाता है? या व्यक्त पाप दादा ने झूठा बोल दिया है? नहीं तो सच्ची बात क्या हुई है? है स्वर्ग क्या? कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? वैकुंठ में होता है या नरक में होता है? है नरक, नरक में होता है। नरक की दुनिया के बीच मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो पहला पहला वारसदार कौन बनता है? हैं? कृष्ण पहला पहला वारसदार बनता है ना? संगमयुगी कृष्ण पहला वारसदार बनता होगा या सतयुगी कृष्ण पहला वारसदार बनता होगा? पहले तो संगमयुगी कृष्ण बने। तो 98 में मुक्ति वर्ष मनाया गया, कब से शुरू हुआ? 15 अगस्त। और दिन कौन सा था? जन्माष्टमी का दिन। गर्भ जेल से मुक्ति हुई तो यादगारें हैं कहां की है? संगम युग की यादगारें हैं। यादगार एक की मनाई जाती है या 500 करोड़ की मनाई जाती है? है जो ओटे सो अर्जुन। तो 98 तो मुक्ति वर्ष मनाया और अभी 2004 को क्या मनाना है? जीवन मुक्त वर्ष है, माने जीवन में रहते हुए ही दुख दर्दों से मुक्ति अनुभव हो तो जरूर है। दुनिया में कोई स्वर्ग ऊपर और नीचे होने की बात नहीं है। जो अव्वल नंबर बच्चा है वो बाप समान स्टेज पहले बनाता है, फिर नंबरवार बच्चे हैं जिनको बाप समान स्टेज बनाकर दिखानी है। बाप के साथ साथ बच्चों का भी जन्मदिन अनुदा हुआ है। ये दुनिया तो एक मांडवा है। ये जो कहते हैं आकाशी आकाश पाताला पाताल, ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के ऊपर दुनिया है। भक्ति मार्ग के अंधविश्वासी लोग ही नहीं समझते, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज क्या समझे बैठे हैं कि ये जो स्टार्स ग्रह उपग्रह नक्षत्र हैं इन पर भी कोई दुनिया बसी हुई होगी, परंतु वहां थोड़े ही किसी की राजधानी हो सकती है। क्यों वहां दुनिया क्यों नहीं हो सकती? दुनिया नहीं हो सकती, दुनिया की राजधानी नहीं हो सकती, कारण क्या? वहां सूर्य से जो एक्यूरेट दूरी होनी चाहिए जीवन के लिए वो दूसरे ग्रह उपग्रह पर नहीं है, दूसरे स्टार्स पर नहीं है। एक पृथ्वी है और पृथ्वी का भी नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल, वहां भी कोई जीव जंतु नहीं पनपते, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्यादा हो जाती है। ये तो रही स्थूल दुनिया की बात। अब चैतन्य पृथ्वी भी होगी, चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी होगा, चैतन्य ज्ञान सूर्य भी होगा। तो चैतन्य ज्ञान सूर्य जिसको गीता ज्ञान सबसे पहले ईश्वर से मिला, उस चैतन्य ज्ञान सूर्य से सबसे नजदीक कौन होंगे? कोई तो होंगे। जहां जीवन जीवन कहा जाए, ये संगम युग की बातें हैं, बहुत नजदीक कौन होंगे है? है? अरे नवग्रह पूजन होता है ना, होता है कि नहीं? तो नवग्रहों में एक तो सूर्य हो गया, बाकी हो गए 8 जिन्हें अष्टदेव के रूप में पूजा जाता है। तो नजदीकी की बात है। कोई शरीर रूपी डब्बे के नजदीक होने की बात भी नहीं है, ये तो मन बुद्धि को बुद्धियोग से नजदीक करने की बात है। जो जितना पुरुषार्थ में नजदीक वो उतना ही ऊंचा पुरुषार्थी कहा जाता है। तो दूसरे स्टार्स में कोई राजधानी बनाने की बात नहीं है, दूसरे जो जड़ स्टार्स है वहां कोई दुनिया की बात नहीं है, ये तो चैतन्य सितारे हैं, जिन्हें एक एक सितारे में अपनी एक एक दुनिया बनी हुई है। बाप सारा राज बैठ करके समझाते हैं, ऊपर नीचे की दुनिया की बात नहीं है, ये दुनिया तो एक ही है। प्रिंसिपल को भी कहते हैं जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हो उन्हों को ये बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों नहीं समझाते हो, हद की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सबको ही समझाए रहे देश विदेश में। बाप कहते हैं अब बेहद का बाप आया हुआ है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने के लिए, क्यों नहीं गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, ये बेहद वर्ल्ड की ह्यूमन हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो क्यों ना उन्हों को यह समझाया जाए तो उनकी भी उन्नति हो। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्यों नहीं इन सबको ये नॉलेज दी जाए, बड़ा युक्ति से समझाना है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी, उन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, उन्होंने भारत में ये राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्र में दिखाया है देवताओं दैत्यों की लड़ाई लगी। तो भागवत महाभारत रामायण आदि शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है वो कहां की यादगार लिखी हुई है? जरूर संगम युग में ब्राह्मणों के ही दो वर्ग हुए, एक राक्षसी ब्राह्मण और दूसरे देवताई ब्राह्मण। उनको देव कहा गया, उनको दैत्य कहा गया, फिर देवताओं ने जीत लिया। अब देवताएं ज्यादा कमजोर होते हैं या राक्षस ज्यादा कमजोर होते हैं? ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं और देवताएं उतने पावर वाले नहीं होते, फिर देवताओं ने कैसे जीत लिया है? राक्षसी शक्तियां कितनी ही पावरफुल क्यों न हो, ईश्वरीय शक्ति की आगे उनकी एक भी नहीं चाल चलती। तो ईश्वरीय शक्ति देव आत्माओं को विजय दिलाती, देव आत्माएं कौन होती है, उनका खास धंधा क्या होता है? जो 84 जन्म में भी परसेंटेज में दिखाई देता है देवता किन्हें कहा जाता है? देवता माना देने वाला, सुख देता है और सुख ही लेता है, न दुख। वाणी में क्या बताया, मुरली में क्या बताया स्लोगन? न दुख देना है न दुख लेना है। दुख देने वाले को भी देवता नहीं कहा जाता और दुख लेने वाले को भी देवता नहीं कहा जाता। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए? है 68 साल हो गए। अपने अंदर झांक करके देखे, पोता मेल निकालते रहे। दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। इस स्लोगन को कहां तक धारण किया है? अगर धारण किया है तो विजय ही विजय है। कहां बैठे हैं? विजय विहार में। तो विजय विहार में बैठने वालों को अब शूटिंग के इस लास्ट वर्ष में जीवन मुक्ति पद पर विजय पानी है, तो क्या करना है? मुख्य काम न दुख देना है न दुख लेना है। चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो और चाहे कर्मेंद्रियों से किसी प्रकार का दुख देना की बात हो, तो ऐसे देवताओं की जीत निश्चित है। भले राक्षसी शक्तियां कितनी ही पावरफुल क्यों न हो, कितनी ही आतताई क्यों न हो, कितनी ही मनमानी करने वाली क्यों न हो, ईश्वरीय नियमों को कितना ही तोड़ने वाली क्यों न हो, उनको हार खानी पड़ेगी। महाभारत की लड़ाई यादगार है। एक ही लड़ाई लगी है 5000 वर्ष में। ऐसी महाभारत लड़ाई और 5000 वर्ष में कभी होती नहीं है। उसके बाद फिर 5000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं लगी। तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्यों नहीं स्कूल में बच्चों को ये नॉलेज देते हो जिसमें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है? कितने वर्ष की? 5000 वर्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। और वो दुनिया में जो मनुष्यों की पढ़ाई है, मनुष्यों के द्वारा खोली हुई यूनिवर्सिटीज है, उनमें कितने वर्ष की हिस्ट्री समझाई जाती है? कितने वर्ष की ज्योग्राफी समझाई जाती है? सिर्फ 2500 वर्ष। वो भी एक्यूरेट मिले या न मिले, बोलो। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं, तो क्यों नहीं ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए? कायदा है, कोई नई इन्वेंशन हो तो पहले पहले बादशाह को दिखाते हैं। है? ये परंपरा भी कहां से पड़ी होगी? है? ये परंपरा भी कहां से पड़ी होगी? संगम युग से। कैसे? है?
मुरलियों का जो राज पहले पहले जो है,
हाँ, जो भी कोई है राज है वो पहले पहले बादशाह को पता चलता है। बच्चू बादशाह पीरू पीरू वजीर, तो किसको पता चलता है? है जो हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी को पहले पहले दुनिया के हिस्ट्री ज्योग्राफी का पहले पता पड़ जाता है। तो दुनिया में भी ये कायदा चला आ रहा है कि कोई नई इन्वेंशन होती है तो पहले बादशाह को दिखाते हैं, फिर उन्हीं द्वारा वृद्धि को पहुंचाते हैं। बाप ने बच्चों को सिखलाया है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर समझाया है। इनको कहा जाता है स्व आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है, जिससे 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। इस नॉलेज से कौन सा पद प्राप्त होता है? 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। वो मनुष्यों की पढ़ाई, जो हद की पढ़ाई है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताती है, उससे तो ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। लेकिन कोई सम्राट नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। ये राजयोग की पढ़ाई के द्वारा बाप आकर के राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो क्या बनना है, भिखमंगा बनना है या राजा बनना है? भिखमंगा बनेंगे, भगवान बाप आया हुआ है तो वहां भी भीख मांगनी पड़ेगी। कहां है? 5000 वर्ष में 2500 साल तो स्वर्ग होता है, बाकी जो 2500 साल बचता है उसमें वहां भी भीख मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि शूटिंग यहां हमने की। जब भीख मांगने से कोई को नहीं मिलता है तो चोरी डकैती भी करते हैं कि नहीं? इसलिए मुरली में बोला है मुसलमान भीख मांगेंगे। हिस्ट्री में भी जब उनको नहीं मिला तो क्या किया है? भारत पर आक्रमण कर दिए, लूट खसूट कर दी। तो तुम बच्चों को तो 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं, समझाना पड़े। भारत में सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। क्या सतयुग में कौन से वंश का राज्य था? सूर्यवंशी राज्य, और त्रेता में चंद्रवंशी राज्य था। भारत जैसा ऊंच कोई नहीं था, फिर कैसे बादशाही गंवाई ये कोई नहीं जानते हैं? कैसे गंवाई? बाम मार्ग माना क्या है? विपरीत, विपरीत माना क्या? विकारी, वि माना विपरीत, कारी माना कारी, विपरीत कारी है, नीचे गिरने का कारी। क्या सतयुग त्रेता में नीचे नहीं गिरते है? गिरते हैं कि नहीं गिरते? तो विकारी हुए कि निर्विकारी हुए है? जब नीचे सतयुग त्रेता में भी गिरते हैं, द्वापर कलयुग में भी गिरते हैं, परसेंटेज वहां नीचे गिरने की कम होती है, और द्वापर कलयुग में नीचे गिरने की परसेंटेज जास्ती होती है। तो नीचे गिरना तो दोनों तरफ होता है, बाकी अंतर क्या रहा? हाँ, वहां द्वापर कलयुग में व्यभिचार फैलता है, मत मतांतर का व्यभिचार, वाइब्रेशन का व्यभिचार, दृष्टि वृत्ति का व्यभिचार, बातों का व्यभिचार, कर्मेंद्रियों का व्यभिचार। इसलिए पतन जास्ती होता है, तीव्र गति से मनुष्य सृष्टि नीचे गिरती है, दुखों की ओर बढ़ती है। सतयुग त्रेता में व्यभिचार नाम मात्र को भी नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो ऐसी सृष्टि बनाने के लिए बाप क्या युक्ति रचते हैं? हैं? अरे अभी तो बताया, दुनिया के नीचे गिरने का कारण क्या बताया? व्यभिचार। तो ऊपर उठने का कारण क्या बनेगा? अव्यभिचार। माना एक, माना हम कृष्ण बन जाए किसी को राधा बना दे, है क्या करें? हाँ, यहाँ ये जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने व्यभिचारी दुनिया बनाई। एक बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो शिवालय बनाते, ऐसी युक्ति रचते हैं। शिवालय और वैश्यालय में क्या फर्क होता है? शिवालय में अब व्यभिचारी होते हैं, क्यों? ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं? पूजा नहीं होती? अच्छा, शिव के मंदिर में जो ढेर सारे देवी देवताएं रखे होते हैं शिवलिंग के आजू बाजू में, चारों तरफ दीवार में लगे हुए, जड़े हुए मूर्तियां रखी होती हैं, उनकी पूजा नहीं करते?
सभी देवी देवता शिव की तरफ
है। हाँ, वो शिवालय इस बात की यादगार है कि सतयुग त्रेता में अव्यभिचार होता है। वो अव्यभिचार की स्थापना शिवालय की यादगार है। क्या यादगार है? कि सबका मुख एक बाप की ओर है। मुख एक बाप की ओर है माने बुद्धि एक बाप में लगी हुई है। जब मन बुद्धि ही एक बाप में लग जाएगी तो और कर्म इंद्रियां दूसरी ओर नहीं जा सकती। तो बाप ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे 21 जन्म के लिए तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। भारत जैसा ऊंचा कोई था ही नहीं, तो कैसे राजाई गवाई ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, है? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो अंदर से पूछो, दृष्टि वृत्ति कृति कर्मेंद्रियों का विचार अंदर से निकाल फेंका है या रोज अटैक करता रहता है? इसलिए बोला, जिस समय ये वाणी चलाई गई उस समय तो बेसिकली भी नहीं जानते थे क्या कि बादशाही देवताओं ने कैसे गवाई। कैसे गवाई का क्या उत्तर निकला? है व्यभिचारी बने तो राजाई गवाई दी। अभी 68 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, है? पढ़ाई पढ़ने वाले दो तरह के हैं, एक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन की आहुति इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए ही दी हुई है, अपना सारा ही जीवन अर्पण कर दिया, तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों से सब की बाजी लगाएगी। दूसरा वर्ग ऐसा है जिसने पूरी बाजी तो नहीं लगाई, पूरी बाजी लगाने का सबके सामने अंजाम नहीं किया, लेकिन अंदर से ऐसे प्रयास में है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी, धंधा धोरी करते हुए भी, तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों की भी बाजी लगा करके,